एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर अक्सर धूल जमी रहती है। हम एक ऐसी सभ्यता की बात करेंगे जो रोम की महानता की चकाचौंध में कहीं कहीं खो गई।
एक ऐसी संस्कृति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक रहस्य है। हम बात कर रहे हैं एटर्सकंस की।
बिल्कुल, जब भी हम प्राचीन यूरोप की बात करते हैं तो जुबान पर बस दो ही नाम आते हैं, ग्रीस और रोम।
हाँ, बस वही।
ऐसा लगता जैसे इतिहास की शुरुआत ही इनसे हुई।
लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस पूरी कहानी को कह सकते हैं कि पलट कर रख देगी।
अच्छा
जी, क्रिस्टोफर स्मिथ की किताब द एटर्सकंस के जरिए हम जानेंगे कि रोम की नींव में असल में किसका पसीना और किसकी सोच लगी थी।
तो आज हमारा मिशन है इस तथाकथित रहस्य के पर्दे को हटाना।
हाँ, और ये समझना कि ये लोग कौन थे, इनकी दुनिया कैसी थी
और कैसे एक हारी हुई सभ्यता आज भी हमारे बीच जिंदा है।
तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, रोम के बनने से भी पहले के इटली में।
और इस सफर पर हमें ले जाने के लिए क्रिस्टोफर स्मिथ से बेहतर कोई गाइड नहीं हो सकता।
वो सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर हैं और वो रोम में ब्रिटिश स्कूल के निदेशक भी रह चुके हैं।
अच्छा, यानी वो सिर्फ किताबों में बैठकर इतिहास लिखने वाले प्रोफेसर नहीं है।
नहीं, उन्होंने उन जगहों पर असल में काम किया है जहां ये इतिहास दबा हुआ है, मतलब खंडरों और कब्रों के बीच।
यही यही उनकी सबसे खास बात है।
स्मिथ का नजरिया किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि प्राचीन लेखकों, खासकर रोमनों की लिखी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वो तो पक्षपाती होंगे ही।
बिल्कुल, वो अक्सर अपने दुश्मनों के बारे में या तो बढ़ा चढ़ाकर या गलत लिखते थे, इसलिए स्मिथ जोर देते हैं पुरातात्विक सबूतों पर।
मतलब वो चीजें जो एटर्सकंस खुद पीछे छोड़ गए। हाँ, मिट्टी के बर्तन, कब्रों पर बनी तस्वीरें, शहरों के खंडहर,
ये चीजें उनके दुश्मनों से ज्यादा सच्ची कहानी बताती हैं।
ठीक यही वो हमें एटर्सकंस की कहानी पत्थरों और कलाकृतियों के माध्यम से सुनाते हैं, ना कि विजेताओं की कलम से। और यही इस किताब को इतना शक्तिशाली बनाता है।
एक इतिहासकार जो जमीन पर काम करता है उसकी बातों में वजन तो होता है। तो चलिए उनकी किताब के सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं। वो इटस्कंस के बारे में ऐसा क्या मुख्य तर्क देते हैं जो हमारी सोच को बदल दे?
देखिए, किताब का जो केंद्रीय विचार है ना, वो बहुत सीधा और मजबूत है। एटस्कंस कोई रहस्यमय लोग नहीं थे जो कहीं बाहर से आए और अचानक गायब हो गए,
जैसा कि अक्सर माना जाता है।
हाँ, स्मिथ कहते हैं कि ये इटली के ही मूल निवासी थे जिन्होंने एक बेहद उन्नत और दिलचस्प सभ्यता बनाई। और सबसे बड़ी बात,
क्या
यही सभ्यता उस रोमन संस्कृति की नींव बनी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है।
वाह, ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। मतलब हम जिसे रोमन सभ्यता की शुरुआत समझते हैं वो असल में किसी और कहानी का अगला अध्याय था।
एक तरह से कह सकते हैं तो ये किताब इतिहास को रोम की आंखों से नहीं बल्कि एटरस्कंस के नजरिए से देखने की कोशिश करती है। स्मिथ हमें पाषाण युग से लेकर एटरस्कन शहर राज्यों के फलने फूलने तक ले जाते हैं। वो उनकी कला, उनके धर्म, उनके समाज की गहराई से पड़ताल करते हैं
और फिर रोम के साथ उनके रिश्ते को समझते हैं।
हाँ, जो दोस्ती और दुश्मनी का एक लंबा और उलझा हुआ किस्सा था जिसका अंत एटरस्कंस के पतन से हुआ।
तो फिर चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये एटरस्कन रहस्य वाली बात, ये आई कहाँ से? क्यों इनके नाम के साथ हमेशा रहस्यमय शब्द जुड़ा रहता है?
मजे की बात यह है कि ये रहस्य उन्होंने खुद नहीं बनाया।
अच्छा,
नहीं, ये बात के लोगों ने उनके बारे में गढ़ा। इसकी कुछ वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है रोमन लेखक।
उनके दुश्मन।
हाँ, रोमनों ने सदियों तक इनसे लड़ाइयां लड़ी, तो जब उन्होंने इतिहास लिखा तो एटरस्कंस को अजीब, विदेशी और नैतिक रूप से कमजोर दिखाया
ताकि अपनी जीत को सही ठहरा सके।
बिल्कुल, ये एक तरह का प्रोपेगेंडा था जो इतिहास का हिस्सा बन गया।
और कोई वजह?
हाँ, दूसरी वजह थी उनकी भाषा। वो जो भाषा बोलते थे वो आज की ज्यादातर यूरोपीय भाषाओं के परिवार, यानी
इंडो यूरोपीय परिवार,
हाँ, उस परिवार का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उसे समझना बहुत मुश्किल था। और फिर 18वीं-19वीं सदी में जब लोगों ने उन्हें फिर से खोजना शुरू किया तो उन्होंने इसे एक खोई हुई रोमांटिक सभ्यता की तरह देखा, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया।
तो फिर अगर ये रहस्य नहीं है तो असल में थे कौन, कहां से आए थे? मैंने सुना है कि कुछ पुराने लेखक कहते हैं कि वे शायद तुर्की से आए थे।
स्मिथ यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वे कहां से आए, ये सवाल ही गलत है।
सवाल ही गलत है।
हाँ, सही सवाल ये है कि वे इटली में रहते हुए एट्रस्कन कैसे बने।
ओह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब ये कि वो कहीं से आए नहीं, बल्कि वहीं विकसित हुए।
बिल्कुल, स्मिथ का तर्क है कि वे इटली के ही स्वदेशी लोग थे जो उस इलाके की पुरानी विलानोविनिन संस्कृति से धीरे धीरे विकसित हुए। हाँ, उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर यानी ग्रीस और मध्य पूर्व के लोगों के साथ खूब व्यापार किया, जिससे उन पर बाहरी प्रभाव जरूर पड़ा, लेकिन उनकी जड़ें वो इटली की ही मिट्टी में थीं।
मतलब ये किसी एक दिन में हुए सामूहिक पलायन की कहानी नहीं है।
नहीं, ये हजारों साल के सांस्कृतिक विकास की एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है।
और इस विकास से जो सभ्यता बनी, उसकी शक्ति का स्वरूप कैसा था? क्या हम इसे रोमन साम्राज्य की तरह एक ही बड़ी ताकत समझें या कुछ और?
नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है, एट्रस्कन सभ्यता कोई कोई एक संगठित साम्राज्य नहीं थी। वो वेई, टार्क्विनिया जैसे कई शक्तिशाली और आजाद शहर राज्यों का एक नेटवर्क था।
अच्छा, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
हाँ, पर वो एक दूसरे से व्यापार भी करते थे और कभी कभी लड़ते भी थे।
मतलब उनमें राजनीतिक एकता नहीं थी।
ज्यादा नहीं, उन्होंने 12 लोगों की लीग नाम का एक ढीला ढाला धार्मिक संघ जरूर बनाया था जहां वे त्योहारों के लिए मिलते थे, लेकिन वो कोई राजनीतिक या सैन्य गठबंधन नहीं था।
और शायद यही बाद में उनकी कमजोरी बनी।
बिल्कुल, यही राजनीतिक फूट रोम के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। रोम एक होकर लड़ता था और ये शहर अलग अलग।
और उनके समाज के बारे में एक बात है जिसने मुझे हमेशा आकर्षित किया है, महिलाओं की स्थिति। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बहुत अलग और प्रगतिशील लगती है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एटस्कन समाज की सबसे अनूठी पहचानों में से एक है। देखिए, ग्रीक और रोमन समाज में सम्मानित महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना पड़ता था, लेकिन एटस्कन समाज में ऊंचे तबके की महिलाएं वो पढ़ी लिखी थीं।
सच में?
हाँ, वे अपना खुद का नाम रखती थीं और सबसे बड़ी बात, वे सार्वजनिक दावतों में अपने पतियों के साथ बराबरी से बैठती थीं।
मैंने उस प्रसिद्ध पति पत्नी के ताबूत की तस्वीरें देखी हैं। उसमें एक जोड़ा जिस तरह आराम से लेटा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे वो कोई मॉडर्न कपल हो जो डिनर पर बातें कर रहा हो।
वो कलाकृति इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है। उसमें पति और पत्नी के बीच को जो आराम और बराबरी का रिश्ता दिखता है, वो उस समय के ग्रीक लोगों के लिए एक सदमे जैसा था।
अच्छा।
हाँ, वो इसे एट्रस्कन समाज के नैतिक पतन का सबूत मानते थे, जबकि ये उनके समाज की एक अलग सच्चाई थी।
चलिए अब उनके धर्म की बात करते हैं। मैंने सुना है कि धर्म उनके जीवन के हर पहलू में शामिल था। और ये डिसिप्लिना एट्रस्का क्या चीज थी? सुनने में किसी सैन्य अनुशासन जैसा लगता है।
हाँ, ये एक तरह का धार्मिक अनुशासन ही था। डिसिप्लिना एट्रिस्का असल में उनकी पवित्र किताबों का संग्रह था।
अच्छा।
ये किताबें उन्हें सिखाती थीं कि देवताओं की इच्छा कैसे जानी जाए। वे भविष्य जानने या शगुन देखने में माहिर थे।
तो वो भविष्य कैसे देखते थे? क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास था?
उनके लिए ये एक विज्ञान था। इसके तीन मुख्य तरीके थे। पहला, हरुस्पिसी।
वो क्या होता है?
जिसमें बलि दिए गए जानवर के अंगों, खासकर उसके लिवर को पढ़ा जाता था। दूसरा, ऑगरी, जिसमें पक्षियों के उड़ने के तरीके और उनकी आवाज से मतलब निकाला जाता था।
और तीसरा,
बिजली गिरने की घटनाओं का अध्ययन।
एक मिनट, जानवर का लिवर पढ़ना, ये कैसे काम करता था? क्या वो उसमें कोई पैटर्न या नक्शा देखते थे?
हाँ बिल्कुल, उनके पास कांसे के बने लिवर के मॉडल मिले हैं जिन पर अलग अलग हिस्सों में देवताओं के नाम लिखे हैं।
ओह।
पुजारी असली लिवर की तुलना उस मॉडल से करता था और देखता था कि लिवर का कौन सा हिस्सा असामान्य है। उस हिस्से से जुड़े देवता के आधार पर वो भविष्य के बारे में अनुमान लगाता था।
ये तो सचमुच बहुत पेचीदा है।
हाँ, ये उनके लिए ब्रह्मांड और देवताओं से संवाद करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका था।
और उनकी कब्रों की पेंटिंग्स, उनमें उदासी के बजाय जश्न का माहौल दिखता है। ये मौत के बारे में हमारे नजरिए से कितना अलग है।
बिल्कुल, उनकी कब्रें हमें उनके जीवन के बारे में बताती हैं, मौत के बारे में नहीं। शुरुआती दौर की कब्रों में आपको रंग बिरंगी तस्वीरें मिलेंगी जिनमें दावतें, संगीत, नाच गाना,
खेलकूद।
हाँ खेलकूद दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है कि वो मानते थे कि मौत के बाद की जिंदगी भी दुनियावी जिंदगी की तरह ही खुशनुमा होगी।
लेकिन मैंने सुना है कि बाद में इन तस्वीरों का मिजाज बदल गया था।
हाँ, जैसे जैसे उनका समाज संकट में घिरा और रोम का खतरा बढ़ने लगा, उनकी कब्रों की तस्वीरें भी उदास और डरावनी होती गईं।
अच्छा,
बाद के दौर की पेंटिंग्स में राक्षसों और अंडरवर्ल्ड के भयानक दृश्य दिखने लगे। ये बदलाव दिखाता है कि उनके समाज की चिंताएं और डर उनकी कला में भी झलकने लगे थे।
और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था, रोम का उदय हुआ। रोमन इतिहासकार तो इसे एक शानदार और सीधी जीत की तरह दिखाते हैं, क्या सच में ऐसा ही था?
स्मिथ इसी सरल कहानी को चुनौती देते हैं। ये कोई एक दिन की या एक लड़ाई की जीत नहीं थी।
तो फिर क्या था?
ये सदियों तक चली एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें सैन्य हार, राजनीतिक संधियां और सांस्कृतिक लेन देन सब कुछ शामिल था। 396 ईसा पूर्व में उनके सबसे शक्तिशाली शहर वेई का रोम के हाथों पतन एक बहुत बड़ा मोड़ था, लेकिन उसके बाद भी कई एट्रस्कन शहर दशकों तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे।
तो फिर उनकी विरासत का क्या हुआ? क्या वो बस इतिहास में खो गए?
नहीं, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उनकी विरासत खत्म नहीं हुई।
तो क्या हुआ?
बल्कि रोमन संस्कृति में घुल मिल गई और उसी का हिस्सा बन गई।
लेकिन क्या घुल मिल जाना बस हार को छुपाने का एक अच्छा शब्द नहीं है? आखिर उनकी अपनी अलग पहचान तो खत्म हो ही गई।
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, उनकी राजनीतिक पहचान खत्म हो गई, लेकिन उनके विचार और प्रतीक जिंदा रहे।
जैसे कि
रोमनों ने सत्ता के कई एट्रस्कन प्रतीक अपना लिए, जैसे बैंगनी रंग का टोगा जो शासक पहनते थे, और फासिस।
फासिस?
हाँ, यानी कुल्हाड़ी के चारों ओर बंधी हुई छड़ियों का बंडल जो मैजिस्ट्रेट के अधिकार का प्रतीक था।
अरे, ये फासिस तो बाद में 20वीं सदी में इटली में फासीवाद का प्रतीक बना था।
जी हाँ, वही। इसकी जड़ें इटस्कन्स तक जाती हैं।
कमाल है।
इसके अलावा रोमनों ने उनसे धार्मिक अनुष्ठान, खासकर भविष्य बताने की तकनीकें, और शहर बनाने और पानी की निकासी की इंजीनियरिंग तकनीकें भी सीखी।
तो इटस्कन विरासत मरी नहीं?
नहीं, बल्कि उस रोमन सभ्यता की गुमनाम नींव बन गई जिसने आगे चलकर दुनिया पर राज किया।
तो इस पूरी कहानी से आज के लिए क्या सबक मिलता है? मुझे तो सबसे पहले ये समझ आया कि इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। जीतने वाला हमेशा अपनी कहानी लिखता है।
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सबक है। हमेशा गालिब कहानी पर सवाल उठाओ। क्रिस्टोफर स्मिथ हमें यही सिखाते हैं। सबूतों को देखो, न कि सिर्फ किस्सों को।
सही बात है।
और ये बात सिर्फ प्राचीन इतिहास पर नहीं, बल्कि आज की खबरों और राजनीति पर भी उतनी ही लागू होती है। हमेशा कहानी का दूसरा पहलू तलाशना जरूरी है।
और महिलाओं की स्थिति वाली बात भी सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाता है कि जिसे हम परंपरा या स्वाभाविक मान लेते हैं, वो हमेशा से वैसा नहीं था। समाज को चलाने के और भी तरीके हमेशा से मौजूद रहे हैं।
सही कहा। और यही बात सांस्कृतिक पहचान पर भी लागू होती है। एट्रस्कन कहानी दिखाती है कि कोई भी संस्कृति शुद्ध या अलग थलग नहीं होती।
वो हमेशा एक मिश्रण होती है।
हाँ, वो हमेशा बाहरी प्रभावों और अपनी जड़ों का एक मिलाजुला दिलचस्प रूप होती है। उनकी कला ग्रीस से प्रभावित थी, उनका धर्म स्थानीय था, और उनका समाज अपने आप में अनूठा था। ये आज की हमारी मिलीजुली दुनिया में पहचान को लेकर होने वाली बहसों के लिए बहुत प्रासंगिक है।
किताब में एक विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है।
बताइए।
रोम को समझने के लिए हमें पहले एटस्कन्स को समझना होगा, क्योंकि रोमन सभ्यता एटस्कन नींव पर बनी थी।
ये पूरे नजरिए को ही पलट देता है।
ये रोम को एक शुरुआत नहीं बल्कि एक नतीजा बना देता है।
बिल्कुल। और ये भी कि मृत्यु के प्रति एटस्कन दृष्टिकोण असल में उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दिखाता है। उनकी कब्रें सिर्फ मौत का स्मारक नहीं थीं, वे जीवन, परिवार और समाज में अपनी हैसियत का एक जश्न थीं।
इस पूरी चर्चा में आपको सबसे ज्यादा हैरान किस बात ने किया?
मेरे लिए सबसे हैरानी की बात ये जानना था कि जिसे हम पूरी तरह रोमन समझते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा असल में एटस्कन था। सत्ता के प्रतीक, मंदिरों का डिजाइन, धार्मिक प्रथाएं,
ये सब रोम ने उनसे लिया, लेकिन बाद में इतिहास लिखते समय इस कर्ज को बड़ी सफाई से भुला दिया। ये एक तरह का सांस्कृतिक अपहरण जैसा लगता है। और मेरे लिए ये दृष्टिकोण में बदलाव है। उन्हें एक रहस्यमयी हारी हुई सभ्यता के रूप में देखने के बजाय, उन्हें उन स्थानीय खोजकर्ताओं के रूप में समझना जिनकी विरासत रोम के जरिए दुनिया तक पहुंची।
हाँ,
ये विनाश की नहीं बल्कि विलय की कहानी है। उन्होंने सीधे तौर पर दुनिया पर राज नहीं किया, लेकिन उनकी विरासत ने उस सभ्यता को गढ़ा जिसने दुनिया पर राज किया।
और ये हमें इस बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, इतिहास में और कितनी ऐसी गायब हुई सभ्यताएं हैं जिनकी कहानियां अपने विजेताओं के बजाय उनके द्वारा छोड़े गए सबूतों के माध्यम से फिर से कहे जाने का इंतजार कर रही हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।